सभी देवताएं कृष्ण हैं। ये वृंदावन में अपराजित नवीन मदन है। मदन दो प्रकार का, एक प्राचित दूसरा और एक अपराजित। इस जगत में उसको काम कहते हैं और उस जगत में अपराजित काम या नवीन मदन भी को कहते हैं, अनंग भी कहते हैं। दोनों में अंतर यह है, जगत वाला काम नरक में ले जाता है और इंद्रियों में कभी कभी उत्पन्न होकर के सुख बता देता है समस्त इंद्रियों और सब समय नहीं रहता, कभी कभी वो प्रकट होता है। और अपराजित मदन है वो सब समय आत्मा को खुद करता है, किंतु कभी उतरेगा नहीं उत्साह होता और कृष्ण के प्रति होगा, ये होगा जड़ के प्रति और वो होगा कृष्ण के प्रति, और उसका नशा कभी नहीं उतरेगा, इसका उतर जाएगा कभी मारपीट से पीट करके अपमानित करके जेल में डाल दे या कुछ और भी हो जाए तो ये नशा उतर जाए, उसका नशा किसी प्रकार से नहीं उतरेगा। और सब समय सेवा भाव में और निस्वार्थ होता है और नव नवायमान होता है, वो काम गायत्री काम विजय जारी पास काम गायत्री और काम बीज के द्वारा जिनकी उपासना, वो स्वयं काम है। कृष्ण का नाम ही है काम, काम माने क्या, जिसकी कामना की जाती है उसको कहते हैं काम। अभिलाषा जिस वस्तु की होती है, सबसे श्रेष्ठ अभिलाषा क्या है, कृष्ण ही, क्योंकि वो सबसे सुंदर है, सबसे मधुर है, सबसे उदार है, सबसे बड़ी कृपालु है, सब प्रकार से वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए उनकी यदि के प्रति हमारा काम हो, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, तब हमारा स्वरूप भी चरितार्थ हो जाए। जब तक वो नहीं मिलते हैं तभी तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं है, चाहे जहां भी चले जाए। जैसे गोप कुमार का जब तक नहीं मिले उनको वैभव मिलता गया, पृथ्वी में बड़े धनी हुए, फिर इंद्र बने, ब्रह्मा बने, ऊपर तक चले, कहीं भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, सनक सनंदन सनक कुमार इत्यादि के यहाँ भी गए, ब्रह्मा के निकट गए, फिर वहां से शिवलोक में गए, इसके बाद वैकुंठ गए, रामचंद्र जी के यहाँ गए, फिर द्वारकापुरी गए, मथुरा आए, कहीं नहीं उसकी तृप्ति हुई। अंत में जब कृष्ण से मिले तो उनकी शांति। उसी तरह से जीव मात्र के लिए जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक उसको कभी भी शांति नहीं होगा। कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है काम, वो आस्वाद्य और आस्वादक दोनों है, दो रूप उनका है। कैसे है, एक रसिक है और एक रस है। जब रस है तो आस्वाद्य है और जब रसिक है तब तो आस्वादन करते हैं रसता। जब रस स्वरूप है तब आस्वाद्य है, तब वो रस के भीतर है, दूसरों के द्वारा आस्वादनीय है। और जब वो रसिक शेखर है तो रसिक शेखर होने पर आस्वादन किया जाता है, तब द्वादश रसों के जो आश्रय है उनके अंदर में जो प्रीति है उसका वो आस्वादन, उसका आस्वादन तब वो अच्छा, अथवा दस है, सब रसी है। रसी तो रस में असाध्य और असाध्य में ये उनका ये भाव। यदि इनको कोई रस पूर्वक आस्वादन करना चाहता है उनको असाध्य मान करके, तो क्या करना होगा? काम व्यक्ति और काम जिसके नीति उपासना कर। पहले होगा काम कृष्ण मंत्र और इसके बाद में होगा काम भी और इसके साथ में जो करना पड़ेगा काम जाए, तब जाकर के उनकी उपासना से उनको ये समझ सकेंगे कि कैसे वो रस स्वरूप है और कैसे वो रसिक है। सब दोनों की उपलब्धि होगी, ऐसे नहीं होगी। काम गायत्री में बतलाया गया साढ़े 24 अक्षर और ये अक्षर साढ़े 24 अक्षर ही एक एक चंद्र माने कृष्ण के अंग रूपी चंद्र है। तो ये चंद्र कितने हुए? तो ये साढ़े 24 एक एक चंद्र माने पूर्ण चंद्र है, इसमें आधा कोई नहीं। चंद्र के दृष्टि में पूर्ण परिपूर्ण नहीं है, इसलिए साढ़े 25 होगा, साढ़े 24 ही हुए। जितना अक्षर है उतने चंद्र, आधा अक्षर है ना, आधा जो भी पूरा कर दिया वो पूरा मान लिया, आधा ही है किंतु चंद्र की दृष्टि से वो परिपूर्ण है। और कैसे है भाई जी? सुना चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आराधना, बिना आराधना किए हुए ऐसे ही हम कहीं से भी समझ में नहीं आता। उसमें बतला रहे हैं ये कैसे, पहले गायत्री ब्रह्म गायत्री जी को इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और एक दो नहीं, और इसके देवता भी बहुत से हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं, सविता है ना, और अग्नि भी हो सकती है, इंद्र भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, बहुत से इसके देवता हैं। इसलिए क्यों उपासक भी ये करते हैं ना, तो इसको शिव का मंत्र कहते हैं। स्मार्टों में जो सूर्य उपासक है उसको सूर्य उपासना का मंत्र कहते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले उसको विष्णु का मंत्र कहते हैं। जैसे ओंकार है ना, ब्रह्मा विष्णु बहन इस लेकर के विष्णु को बीच में करके शंकर उनको दोनों सहायक है, इस रूप में उनको इससे बहुत से अर्थ। जैसे जैसे देवता बदलते जाएंगे, जिस जिस देवता के लिए वो किया जाएगा उसका अर्थ भी वैसे ही होगा। इसलिए समस्त भारत वर्ष में जितने भी ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग बैठे हुए गायत्री मंत्र जरूर करते हैं, आजकल स्त्रियों को भी दिया जाने लग गया। यहाँ तक कि जो कुछ नहीं जानते उनको भी मंत्र बाजार का वो सूत्र खरीद कर धागा खरीद करके बस लपेट देते हैं, वो भी हो गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, करीबे 10-12 वर्ष पहले की 15 वर्ष पहले श्री राम शर्मा ने कराया, अब तो वो दिवंगत हो गए। ब्रह्मा मेला लगा था, उसमें 1008 यज्ञ कराए और जो आ गया चीटी से लेकर के बैल गधे घोड़े बाजार में, उस समय में धागा खत्म हो गया, सब खत्म, कोई धागा नहीं, और सबको दे दिया और सब ब्रह्म में लीन हो गए। इतना सहज नहीं, इसे कहते हैं होने पर भी काम गायत्री जो है उसका एक ही मात्र अर्थ है, दो अर्थ नहीं है। काम गायत्री वो कृष्ण का अतिरिक्त किसी में लागू होगा ही नहीं, किंतु है उसी का परिपक्व ये भाव। ब्रह्मगायत्री अस्तित है और उसी का यह सिद्ध स्वरूप परिपक्व फल या रसमय ब्रह्म दोनों एक ही चीज को विनोद करता है। एक ही चीज के लिए ब्रह्मगायत्री ही परिपक्व अवस्था में सिद्ध अवस्था में काम जाती है तब यह रसमय होती है। जिसमें सूर्य लिया गया संकुश लिया गया और उमा से ये सब बहुत से तत्व सब लिए गए इसमें वही ओंकार जो था प्रणव उपासना करते करते भक्तों के हृदय में वो उसकी पल्लवी और फल से युक्त होने पर वही काम बीज हुआ। इसमें काम बीज होने पर रस जैसे कच्चा आम है कच्चा आम में सभी कुछ पके आम में होता है किंतु वो सब रसमय हो जाता है इसलिए रस एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें उसमें तीन खाना और उमा और इसमें हो गया कॉल और ई अनुस्वार ये चार इसमें एक रस बढ़ गया और इसके साथ में अब इसमें कृष्ण मंत्र भी इसी के अंदर है वो भी आ गया है इसमें काम गायत्री वो भी आ गया है ये बतलाना नहीं चाहिए तभी अभी फल के धर्म से बतला देता फल के धर्म क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग विकसित है इसलिए थोड़ा सा बतला रहा पूरे धर्म से नहीं बतला जिसको जानना होगा वो स्पेशल रूप में वो सीखेगा तब होगा अभी साधारण धर्म से अनुस्वार वो ओम ओम ही यहाँ पर हो गया और बाकी जो तीन चरण है गायत्री वाले में ब्रह्म गायत्री का वो तीन चरण इसमें भी आ गए। आज सबसे पहले कृष्ण मंत्र हुआ और कृष्ण मंत्र का फल लग गया काम गायत्री वो काम काम मन ही फल होगा वो फल है कौन सच्चिदानंद श्री नंद नंदन ब्रजनंद नंदन श्याम और इनका मैंने गृह का ये शक्ति है शक्ति हुई सब शक्ति सब सब शक्तियों की मूल शक्ति कौन है लक्ष्मी स्वरूप पूजा तो ई का अर्थ हुआ राधा जी और नौ हुआ दोनों के मिलन में जो रस उत्पन्न होता है उनका जो विलासमय जो भाव है ये हुआ लौ मन आम दखलादी से ये दोनों का मिलन का ये ब्रह्म और ओंकार में ये चीज नहीं है और ये जो है वो क्या है उसमें जो आनंद मिलकर के दोनों से जो उत्पन्न हुआ वो ये हुआ विलास और उन दोनों का जो मिलन का जो आनंद है वो हुआ संग्रह कृष्ण मंत्र में कृष्ण है गोविंद है और गोपी जन बल एक है संबंध एक है अभिज्ञ एक है संबंध है कृष्ण बहुत ही सुंदर रूपवान गुणवान है रूपवान गुणवान और सुंदर से ही संबंध होता है और सभी चाहते हैं इसलिए मदन मोहन जो है वही यहाँ पर कृष्ण है वो जगत के साथ ही संबंधित है सब जगत को प्राणियों को मोहित करने वाले समस्त जितने भी अवतार हैं सबसे सुंदर है। और यही वो को माने इंद्रियों को उत्फुल्ल करने वाले हैं, आनंद से प्रमत्त करने वाले हैं, तब वही कृष्ण मदन मोहन जी गोविंद के रूप में अनुभूत होते हैं। समस्त इंद्रियों के द्वारा हृदय को भी उल्लास करने वाले, आनंद नैनों को भी, कर्णों को भी, समस्त इंद्रियों के वो विषय और सबसे रुचि के बाद इसे वही गोविंद हुए। और गोपीनाथ कौन है, ये प्रयोजन सत्य है। बंसी भट्टाचार्य स्थित कर्षण बेन सराई गोपीनाथ, वो समस्त जीवों को, प्राणियों को अपने बंसी से और अपने रूप से सबको आकर्षित करने और उनको आनंद देने वाले ये गोपीनाथ। अब इन तीनों को ले लो, उसमें काम गायत्री में पहला है, पहले जो मदन मोहन जो है संबंध के देवता, अब मदन मोहन जो अब ये काम है, माने वही काम के अधिक शास्त्री देवता, वही जगत में सबसे अधिक अभिलषणीय है, वही काम करिए। ये काम के समुद्र होता है, अब वहां यहाँ करके परिपक्व रूप में यहाँ करोगे काम, ये काम भी। और दूसरे से संबंध वाले गोविंद जी सेवा को ग्रहण करने वाले समस्त रसों को के जो विषय और आश्रय दोनों हैं, कौन है विषय और आश्रय, कृष्ण। अब ये यहाँ पर जो गोविंद है, सब रसों में इनकी आराधना हो सकती है और सब रसों के ये प्रापक ग्रहण करने वाले हैं, आस्वादन करने वाले भी आचार्य भी हैं। अब ये हो गए, यही हो गए, ये अभिधेय हो गई है। और उसके ऊपर जो उसमें थे गोपीनाथ, गोपियों के साथ में विलास करने वाले समस्त रसों के मूल आश्रय विग्रह जी हैं, और सब रसों का आस्वादन करने वाले गोपीनाथ जी अब यहाँ पर हो गए। और समस्त जगत को प्रमत्त करने वाले, अब उसने बतलाया कि ये काम गायत्री से उनकी उपासना होती है। केवल काम गायत्री से नहीं, उसमें बीज से जोड़ दो, तो बीज से जोड़ने पर ये पूरा मंत्र हुआ। उसमें अब देखो ब्रह्म गायत्री भी आ गई और कृष्ण मंत्र भी इसमें आ गया, इसलिए ब्रह्मा जी को पहले कृष्ण ने योग माया के द्वारा गोपाल मंत्र लाखों वर्ष तक उनकी आराधना की। जब परिपक्व उनकी आराधना हुई तो कृष्ण ने अपने बंसी के ध्वनि से उनको कैसे दिया, 300 स्वरों में दिया, 300 तालों में स्वरों में दिया, इसलिए स्त्री है। आठ आठ अक्षरों का एक संघ एक एक स्वर बना दिया और होकर के 3 चरणों में जिसका दान करने पर विश्व के समस्त लोगों का तरण तारण दोनों कर दे और अपने को उसने काम के रूप में प्रकाश कर दिया। ये है काम गायत्री। अति इसको कृष्ण गायत्री कहने से हर्ज क्या था,
जब संबंध
इसको काम गायत्री कहा। यहाँ पर कृष्ण से भी बढ़कर के नाम ये जो काम है, ये मजदूर भाव में ही केवल ये ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण की चरम परिणति या सर्वोत्तम अवस्था का नाम काम, वही काम देव अनंत के रूप में। इसलिए काम गायत्री कहा, उसी से उसकी उपास। इसमें सनातन शिक्षा में ये बताया गया कि वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जब इसकी व्याख्या करने के लिए गए तो उनको पता नहीं ये सिलाई ये 24.5 अक्षर तो इसमें कैसे लिए, या तो होगा ना स्त्री को छोड़ दो तो होगा 25 और उसको ले लो स्त्री को तो हो जाएगा 26। उसमें भी अंत में जो है ना आधा तो काम देगा अलग अलग कर लो तो 26 हो जाएगा और या को एक ले लो तो 24.5 होगा, 25 होगा। तो 25 में से कौन सा आधा है जो 24.5 होगा नहीं समझ रहे, ये समझना भी बहुत कठिन है। हम लोग को ये बतला दिया जी जा के तो कौन कौन सा स्तर क्या है, तभी हम लोग फिर समझ में पीछे नहीं जाएगा। अब ये कारण है राधा जी ने उनको स्वप्न दिया और उसमें प्रकट होकर के उनको कहा क्या प्रणागम परम भक्त व्याकरण में इसको बतलाया गया है कि बी के पहले जो यकार होगा वो आता। उन्होंने पुष्प आकर के खोजा ढूंढने के बाद भी और देखा उनका सूत्र और साधना करने के बाद में उनके एक एक अक्षर 24.5 अक्षर होना चाहिए और ये 24.5 चंद्र है। ये कैसे हुआ चैतन्य के सामने वहां बताया गया मुख चंद्र जो है मुखिए ये पहला और सबसे श्रेष्ठ है, ये समस्त चंद्रों का ये मालिक राजा है। 24.5 चंद्र है उनमें ये मालिक कौन है, राजा कौन,
मुख चंद्र
ये। अब इसके बाकी सब परिषद चंद्र है, सब परिषद चंद्र है। परिषद माने परिवार परिषद, फिर मुखचंद्र के बाद में बतलाया दो खंड माने
प्रपूर्ण,
तो ये भी दो पूर्ण चंद्र। तीसरा हुआ ना और चौथा बतलाया लला, इसको बतलाया अर्थ अर्थचंद्र और इसके बीच में जो ललाट में जो बिंदी होती है ये पूर्ण किंतु है। ललाट को आधा क्यों कहा, ये केतु से आधा घटा हुआ है और है ना अष्टमी का चंद्र इसको माना गया। अष्टमी का चंद्र क्यों माना गया, वो स्पष्ट होती है और आधा मंडल 16 का आधा कितना हुआ 8 हुआ ना 16 चंद्र की 16 कलाओं में से जिस दिन आधा होगा अष्टमी को तो वो आधा चंद्र हुआ, इसलिए अष्टमी का चंद्र मान लिया गया लला। और इसमें यहाँ जो बिंदी है उसको पूर्ण माना, ये हुआ 4.5 पहचान मुख 1, 2, 3 पूर्ण वाला 4 और आधा हो गया 4.5 और बाकी जो रह गया 20 10 ये नख और 10 ये नख ये 24.5। इसमें से एक एक चंद्र का वर्णन करते हुए आधा जो ललाट है वो ठीक उसमें जो ये है ना काम देवाय वो ठीक उसी स्थान पर है, जब अच्छी तरह से विचार करेंगे तो देखेंगे ये उसी स्थान पर ललाट के स्थान पर ही वो अब किंतु अर्धचंद्र होते हुए भी वो पूर्ण है, इसलिए साढ़े आधा के लिए नहीं, वो साढ़े चौबीस में आधा वाला भी पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं, अखंड है, पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णात पूर्णम उदुच्य थे पूर्णस्य पूर्णम एव पूर्णमेवा परिपूर्ण है, उनका आधा कुछ नहीं, उनका एक अंश और कला भी है वो परिपूर्ण है। इसलिए काय काम गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री का परिपक्व और रसमय स्वरूप है, उसमें ये सब विलास नहीं है, उसमें जगत की सृष्टि का व्यापार है, भूर वो असहम जहाँ तप सप्तकार सृष्टि जी के रूप में, और जिससे ये सब प्रकाशित होते हैं, जिस तेजी के द्वारा प्रकाशित होते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया, जो विलासों से परिपूर्ण जो है, जो अपनी शक्ति के साथ में अपने समस्त शक्तियों के साथ में परिपूर्ण रस में जो विकसित है, उनकी उपासना का किसी ये एक दो दिन का काम नहीं, इसकी उपासना यदि ठीक से इसकी उपासना अपने आप अपने स्वरूप को ये प्रकट करते चलेगा। गायत्री भी वैसे ही है, गायत्री भी प्रकाशित होने में न जाने कितने जन्म लग जाएगा, किंतु ब्राह्मण मात्र को बीज मात्र को बीज माने ब्राह्मण सबको गुरु से ग्रहण करके और इसका कुछ तत्व जान करके जरूर करना चाहिए। सब हम मनुष्य किस लिए हुए हैं सब कुछ समझेंगे, इन्हीं सब चीजों के लिए, जो तत्व से नहीं समझ करती नहीं करेंगे तो कुछ भी उपलब्धि नहीं, कुछ देने के बाद में उसे और ऐसे समझ बूझ करके करेंगे, उसमें श्रद्धा आएगी, फिर निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, और वही मंत्र कृष्ण के रूप में, ये मंत्र नहीं है, ये राधा कृष्ण का ये स्वरूप ऐसा समझ करके, और ये सर्व अंतर्यामी और वृंदावन के नवीन मदन सर्व कारण कारणम सर्व शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय ये नाम ऐसा समझ करके करना है। फिर कहते हैं पुरुष जो किंबास्थावर जंगम सब चित्ता पर सब साक्षात मन 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 मत मन मत मदन पुरुष हो या ज्योतिष हो नारी हो अथवा स्थावर जंगम भी क्यों न हो, स्थावर जंगम में पेड़ पौधे कीड़े पकौड़े ज्योतिष हैं, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, और साक्षात मनमत के भी मदन स्वरूप है, कौन काम गायत्री अथवा कृष्ण दोनों के, ये दोनों एक ही स्वरूप है, दो नहीं है। अभी मंत्र के रूप में देखता है, देखते हैं नाम मंत्र कृष्ण और कृष्ण स्वरूप सभी एक है, कृष्ण का स्वरूप कहो मंत्र कहो नाम कहो सब एक ही है, किंतु होता क्यों नहीं, अभी हम लोग कृष्ण नाम करते हैं क्यों नहीं दिखता, दिखता क्यों नहीं है, जैसे हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, संसार के विषय जीतने हैं जो बड़े प्रिय और मनोरंजन लगते हैं, मनोहारी लगते हैं इस जगत से, जैसे क्रीड़ा है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और दूसरे खेलना झूला, आजकल यूरोप में फुटबॉल खूब जोर से हो रहा है, कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये मनोहारण किंतु हम लोगों को तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब, बल्कि देख करके दस आठ बंद करते क्यों, इसी तरह से इस जगत में सब कुछ मनोहारित तो नहीं लगेगा, बनते हैं तब तक ये जगत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, किंतु जब ही अपराकृत वस्तु कुछ कुछ अनुभूति का विषय होने लगती है तो ये संसार का सब कुछ, यहाँ तक कि परिवार, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है सब, ये विश्व की सृष्टि करने वाले शंकर हैं। शंकर जी इस रूप से मुग्ध नहीं होते, ये विश्व के रूप को देख करके यहाँ तक कि कामदेव को भी जला दिया, किंतु उन्होंने जब मोहिनी रूप के लिए प्रार्थना किया तो अपराकृत जगत की एक झलक थोड़ी सी दे दी, अपराकृत जगत भी या कहो ये महामाया का ही झलक दे दी। और शंकर जी ने उसे देखा और शंकर जी कैसे हो गए, इतना उसमें रूप है, इतना उसमें माधुर्य है, जो लोग अनुभव नहीं करते वही लोग भजन नहीं करते, जिनको थोड़ा सा भी अनुभव है ना वो भजन छोड़ करके जगत में कभी भी नहीं जाए। प्रसन्न महाप्रभु जी की विश्व सुंदरी स्त्री, आज उनकी शादी हुई वहां जन्म जन्म में हरभिनय जगत।
Thank you.